ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ठीक, आज हम सभी जो मनन चिंतन करने बैठे हैं, टॉपिक दिया गया है लक्ष्य की ओर, लक्ष्य प्राप्ति की ओर। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, कहाँ पहुंचना है, क्या प्राप्ति करनी है। जब ये टॉपिक मिला तो बैठे चुपचाप मनन चिंतन करने लगे कि क्या लक्ष्य प्राप्ति करनी है। तब बचपन का वो स्लोगन याद आया, जो नारे लगाते थे ना, प्रभात फेरियों में जाते थे तो उस समय नारा लगवाती थी हमारी दीदियां, और वो नारा था मार्ग हमारा। पुरानों को याद होगा क्या नारा लगाते थे, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा, बड़े आवाज से बोलिए, किसी को तो पता होगा, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। तो ये नारा याद आया, बाबा ने, हमारी वरिष्ठ दादियों ने, दीदियों ने बहुत समय पहले से ही जो नारा दिया था, जो हम लोगों को बताने जाते थे, वो क्या था, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक्चुअली क्या है, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। क्या होता है जीवन मुक्ति को प्राप्त करना, तो इसके बारे में विचार सागर मंथन चला। अल्टीमेटली आत्मा क्या चाहती है, कहां मुझे पहुंचना है। अगर दुनिया वालों से, भक्तों से पूछो तो कहेंगे मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या होता है, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, माना एक ऐसी स्टेज, व्हेन यू सीज योर एग्जिस्टेंस, जब आप अपने अस्तित्व को संपूर्ण रूप से खो देते हैं, परमात्मा में विलीन हो गई। क्या एग्जाम्पल देते हैं बाबा मुरलियों में, बोलते हैं ना दुनिया वाले, क्या एग्जाम्पल देते हैं, पानी का बुदबुदा है आत्मा, फट गया तो पानी में विलीन हो जाएगा। जैसे पानी का बुदबुदा पानी में मिल जाता है, वैसे ही आत्मा भी पानी का बुदबुदा है, जो भगवान से अलग हुई है, फिर जाके उसमें विलीन हो जाएगी। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, एक चैतन्य सत्ता है। ना किसी ने आत्मा को बनाया है, ना आत्मा कभी खत्म हो सकती है। शिव बाबा ने बैठ के कभी आत्मा बनाए हो, ऐसे छोटे छोटे गोलियां, फिर उससे भी और छोटी छोटी गोलियां, और उससे और छोटी छोटी गोलियां, ऐसी आत्मा बनी हो कभी, कैसे बनाया होगा, मिट्टी कहाँ से लिया होगा, पानी कहाँ से लिया होगा आत्मा को बनाने के लिए, या किससे बनाया होगा। आत्मा कभी बनी नहीं है। और लोग कहते हैं आप इसको कैसे प्रमाण करेंगे, कोई तर्क दुनिया में नहीं है जो इसे प्रमाणित करे, जरूरत भी नहीं है। जब आप तर्कों से परे जाके इसे महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, तब आप इसे एक्सेप्ट कर सकेंगे। बाकी किसी तर्क से कोई आपको समझा देगा और आप उसे कन्विंस हो जाएंगे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई वो साइंस नहीं है दुनिया की लेबोरेटरी में प्रूव करने वाला। ये अनुभूति की बात है कि मैं आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस कभी सीज नहीं हो सकता, मेरा अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं हूं और रहूंगी शाश्वत, तो फिर इस जर्नी में मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य हमेशा हमेशा के लिए जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। क्या है वो जीवन मुक्ति की स्थिति? एक्चुअली देखा कि बाबा ने हमें जो पांच स्वरूप की प्रैक्टिस कराई है, वो पांचों ही स्वरूप अपने अपने स्तर पे जीवन मुक्ति की अनुभूति है। मेरा अनादि स्वरूप मेरा जीवन मुक्त स्थिति है। एक्चुअली हम उसको मुक्ति बोलते हैं, लेकिन वो भी जीवन मुक्त स्थिति है। जब मैं बिंदु रूप स्थिति में हूँ, जब मैं आत्मा स्वरूप में हूँ, जब मैं अपने इटर्नल एग्जिस्टेंस को अनुभव कर पा रही हूँ, अपने अनादि अविनाशी स्थिति को अनुभूति में ला पा रही हूँ, वो एक जीवन मुक्त स्थिति है। कोई बंधन नहीं है उस समय। फिर हमारा कौन सा स्वरूप है? अनादि के बाद आदि स्वरूप है। आदि स्वरूप में हम कौन हैं? देवता हैं। देवता स्वरूप कैसा स्वरूप है? जीवन मुक्त स्वरूप है। जीवन में है लेकिन कोई बंधन नहीं है। ठीक है कि नहीं? फिर हमारा स्वरूप कौन सा है? मध्य का स्वरूप, पूज्य स्वरूप। चाहे मध्य का पूज्य स्वरूप लें, वह मध्य में हम जो देवताओं के बाद जो हमारी स्थिति होगी, हम पुजारी भी बने होंगे या कर्म क्षेत्र में आए, जब कर्म का प्रभाव आत्मा पे पड़ने लगा है, तो भी हमारी स्थिति अभी के कर्मों अनुसार जो हमें उस समय प्राप्त होगी, वो कहीं ना कहीं जीवन बंद होगी, जीवन मुक्त अवस्था होगी, जीवन बंद अवस्था नहीं होगी। इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि द्वापर युग में हम जीवन मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे। उसका बेस भी कहीं ना कहीं संगम युग है। हमारा पूज्य स्वरूप हमारा जीवन मुक्त स्वरूप है, लेकिन हमारा पुजारी स्वरूप भी, जो भी हम द्वापर युग में जिस स्थिति में भी होंगे, उस समय भी बाकी के मनुष्य आत्माएं कर्म बंधनों में जकड़ेंगी, लेकिन हम आत्माएं कर्म बंधनों में जकड़े हुए नहीं होंगे। उस समय भी हमारी जीवन मुक्त अवस्था हो, ये हमारा लक्ष्य हो। फिर उसके बाद अंत में के कौन सी स्थिति है हमारी, कौन सा स्वरूप है? ब्राह्मण स्वरूप, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें अपना बनाया, हमें अपनी पहचान दी। जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, उस दिन से कौन सी स्थिति होनी चाहिए? एक्चुअली जीवन मुक्त अवस्था है जीवन में, लेकिन मुक्त अवस्था है। दुनिया बंधनों में जकड़ी हुई है, लेकिन बाबा के बच्चे कौन सी स्थिति को अनुभव कर रहे हैं? मुक्त स्थिति है, जीवन मुक्त स्थिति है। ठीक है कि नहीं? क्या होता है बेसिकली जीवन मुक्त स्थिति? उससे पहले एक और रह गया स्वरूप, कौन सा स्वरूप? फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप में भी हम क्या हैं? जीवन मुक्त स्वरूप में हैं। लेकिन ये जीवन मुक्त स्वरूप होता क्या है? जीवन में है लेकिन मुक्त स्वरूप में है, तो ये जीवन मुक्त अवस्था कैसी अवस्था है? बिल्कुल ठीक, विकारों से मुक्त अवस्था है। और किसको कहें, ये हमारी जीवन मुक्त अवस्था है। बिल्कुल ठीक, और कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, कोई बंधन में हम बांधे हुए नहीं हैं, मुक्त अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बाबा उसको क्या कहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था क्या है? उसको सतो प्रधान अवस्था कहा गया। कौन सी स्थिति है वो हमारी? सतो प्रधान अवस्था। क्या है वो सतो प्रधान अवस्था? देवताओं को सतो प्रधान कहा गया है। उसका मतलब क्या होता है सतो प्रधान? बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में बड़ा सिंपल करके हमें बताया है कि प्रत्येक आत्मा में 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, 7 चीजों से आत्मा बनाई गई है। अभी तो कह रहे थे आत्मा बनी नहीं, बाबा ने कुछ घोला नहीं, मिट्टी नहीं डाला, छोटे छोटे गोलियां नहीं बनाई, अभी फिर कह रहे हैं 7 चीजों से आत्मा बनी है। क्या है वो 7 चीजें? मिट्टी, पत्थर, पानी नहीं, अग्नि नहीं। तो आत्मा किससे बनी है? हाँ, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद। ठीक है, ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं आत्मा के। जब ये 7 इंग्रेडिएंट्स अपने कंप्लीट स्टेज में हैं, तो आत्मा सतो प्रधान है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो वो कौन सी स्थिति है? पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं चाहिए अभी। और आत्मा एकदम तृप्त है, प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति है, किसी और चीज की इच्छा ही नहीं है। आप देखें, आप कोई भी चीज को पाना क्यों चाहते हैं? फूल चाहिए, क्यों फूल चाहिए? क्यों अच्छा लगता है? खुशी देता है फूल, ठीक है कि नहीं? इसलिए हमें फूल अच्छे लगते हैं। माना फूल नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए क्या? खुशी। वो किसके जरिए पाना चाहती है? फूलों के जरिए। अब भाई सोफा में बैठना अच्छा लगता है, क्यों? कंफर्ट मिल रहा है, सुख मिल रहा है। आत्मा को सुख चाहिए, सोफा नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? और ये जानने की इच्छा, वो जानने की इच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवीओ में कुछ ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उससे समाचार पूछ रहे हैं, इससे समाचार पूछ रहे हैं, क्यों? जानने की इच्छा। एक्चुअली आत्मा की इंग्रेडिएंट ज्ञान है, और उस ज्ञान की तृप्ति हम ये वो जान करके करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, देवताओं को कुछ जानने की इच्छा होगी कि नहीं इच्छा होगी? क्या होगा? देवताएं इधर उधर भागेंगे, रिसर्च करते फिरेंगे कि नहीं करेंगे? उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एक तृप्त स्थिति में हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। क्या है ये जीवन मुक्त अवस्था? सत्वप्रधान अवस्था। सत्वप्रधान अवस्था माने पाना था सो पा लिया, और कोई मार्जिन ही नहीं है। आत्मा के सातों ही इंग्रेडिएंट्स फुल पोटेंशियलिटी में हैं, भरपूर है आत्मा, फिर उससे और कुछ नहीं चाहिए। कैसी स्थिति है देखो, शास्त्रों में ध्रुव की कहानी है। आप सबने ध्रुव की कहानी सुनी है? मुझे बड़ा मजा आता है उसकी कहानी सुन के और सुना के, लेकिन आज इतना समय नहीं होगा। मैं उसका जो जो पार्ट हमें समझना है वो मैं बताती हूँ। ध्रुव जब तपस्या करके अपनी तपस्या में सफल हो जाते हैं तो उन्हें अनुभव होता है परमात्मा के स्पर्श का, भगवान के स्पर्श का, और जब आंख खोलता है तो देखता है कि भगवान के गोदी में है। इसी जिद्द के साथ ही उन्होंने तपस्या शुरू की थी ना। ध्रुव की कहानी ये है कि वो अपने पिता के गोद में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी दूसरी सौतेली माँ थी, वो आई और उसने कहा मेरा बेटा पिता के गोद में बैठेगा, तुम नहीं बैठ सकते हो। तो उसने कहा माँ लेकिन मैं भी तो छोटा हूँ, मुझे पिता के गोद में बैठने की इच्छा है। तो माता ने कहा अच्छा, तुम्हें अगर इच्छा है तो तुम भगवान विष्णु की गोदी में बैठो, जाओ, लेकिन अभी इस पिता की गोदी में मेरा बेटा बैठेगा। उसने कहा अच्छा माता, भगवान विष्णु की गोदी में जाने के लिए क्या करना होगा? कहा तपस्या करो, जंगल में जाओ, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ध्रुव वहां से निकल पड़ा और तपस्या करने लगा। फिर जो भी बातें बाधा विघ्न जो भी आए उसको बड़े प्यार से पार कर दिया। कैसे पार हुआ, क्या हुआ, वो भी बहुत सुंदर एक भासना उसमें दी गई है कि जब हम तपस्या के मार्ग पे जाते हैं तो होता क्या है और हमारे तपस्या की शक्ति क्या करता है, किस प्रकार से हमारी प्रोटेक्शन करता है। और जब वो देखता है कि मैं भगवान के गोद में बैठा हूँ तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हैं और कहते हैं ध्रुव मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या कहते हैं भगवान? तुम्हें जो कुछ चाहिए सारी कायनात में, जो भी तुम्हारी इच्छा है तुम मांगोगे, आज मैं तुम पे इतना प्रसन्न हूँ कि उसे तथास्तु करने के लिए आया हूँ, तुम्हें दे दूंगा, क्या चाहिए मांगो। तो बताइए ध्रुव ने क्या मांगा होगा? हाँ जी, घड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, महल दे दो, पोता दे दो, बेटा दे दो, राज्य दे दो, फलाना दे दो, ढीकना दे दो, ऐसा कुछ मांगा होगा? क्या मांगा? भगवान आप किसकी बात कर रहे हो? कुछ मांगने की बात? पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी पाना इसके आगे फीका लगता है, ठीक है ना? तो ये सत्वप्रधान अवस्था वो अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था ये अवस्था है जब सब कुछ पा लिया है आत्मा ने और कुछ पाना नहीं रह गया है। लेकिन भगवान उसे इंसिस्ट करते हैं कि ध्रुव ये मेरे भगवान होने की मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि जब भी कोई भक्त तपस्या करता है, मुझे प्राप्त होता है, तो मैं उसे वरदान देता हूँ। इस नाते से, इस मर्यादा को निभाने के लिए तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा और मुझे वो देना होगा। तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो देने के लिए आज राजी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ। ध्रुव ने क्या मांगा होगा? भगवान क्या मांगूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर से नीचे तक। बहुत लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन होता है और उस कन्वर्सेशन में पहली मांग जो ध्रुव रखता है वो कहता है अच्छा प्रभु, जिस माता ने मुझे इस मार्ग तक भेजा, जिस माता के कथन अनुसार मैंने इस इतनी ऊंची उपलब्धि को पाया, उस माता का कल्याण हो। ध्रुव ने पहली मांग ये मांगी थी तो भगवान और प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा ध्रुव कथास्तु, लेकिन ये देके मेरा पेट नहीं भरा, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए मेरे वत्स तुम कुछ और मांगो। फिर ध्रुव ने एक्चुअली जो मांगा वो हम बच्चों की मांग है, मतलब जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ध्रुव ने जो मांगा। कहा प्रभु मुझे तो इस दुनिया में मांगने योग्य पाने योग्य कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जो आपकी इच्छा है वो मेरे द्वारा प्रतिपादित हो। सुना क्या कहा? जो आपकी इच्छा है वो मेरे द्वारा प्रतिपादित हो। देखो उसको किसी ने कितना सुंदर लिखा है, मालिक तेरी रजा रहे और बस तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और बस तू ही तू रहे, ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। सुना, ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। भगवान से क्या कहते हैं कि मालिक तेरी ही रजा रहे, जो तू चाहता है वही हो और बस तू ही तू हो। मेरे अस्तित्व की, मेरी वजूदगी की इतना कोई महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है कि तुम ही रहो, तुम मुझ में दिखाई दो। बाबा जो कहते हैं ना, बाप समान स्थिति बन जाए बच्चों की, बाबा दिखाई दे फिर मैं दिखाई दूं, मैं फलाना हूं ढीकना हूं, नहीं मुझ में कौन दिखाई दे, मेरा बाबा दिखाई दे। और बस तू ही तू रहे, ना मेरी ना कोई, मालिक तेरी रजा रहे और बस तू ही तू रहे, ना कोई आरजू रहे, मेरी फिर कोई आरजू ही नहीं रह जाए। सुना, कोई आरजू मेरी नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा है वही वही मेरे द्वारा हो। तो क्या है कि फिर बाबा के बनने के बाद क्या स्थिति हो, सतो प्रधान स्थिति में फिर क्या है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ, मैं कंटेंट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं वो स्थिति में आके पहुंचा हूँ जो मेरे लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शरीर में है, संगम युग है, बहुत कुछ करने का ये समय है, बीज बोने का ये समय है। तो इस समय पे मेरे द्वारा क्या हो, जो मेरे बाबा चाहते हैं वो मेरे द्वारा कार्यरत हो। सुना, तो वो स्थिति जब आएगी कि अब मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बाबा की श्रीमत अनुसार, जो बाबा मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं कर रहा हूँ, ये संगम युग की सतो प्रधान अवस्था है। और वही सतो प्रधान अवस्था फिर सारे कल्प तक चलेगा। जो ऐसी आत्मा होगी संगम युग में, बाबा के श्रीमत अनुसार, बाबा के कहे पे ही तृप्ति की अनुभूति करती होगी, उसे सारे कल्प में कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हर एक चीज उसके सोचने से पहले उसके पास उपलब्ध होगा। सुना, फिर क्या सोचा कि वो स्थिति को पहुंचने के लिए करें क्या, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, प्राप्त जीवन मुक्ति करना है, लेकिन चलना कहाँ से है, शुद्ध प्रवृत्ति से चलना है। ये जो कहा ना, मैं क्या करूं, अब ऐसा तो नहीं कि भगवान मिल गए उसके बाद शरीर छूट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, नहीं, ये ड्रामा इटर्नल है, ये खेल तो चलता ही रहेगा, कहीं कभी खत्म होने वाला नहीं है। परम धाम भी जाएंगे तो आने के लिए ही जाएंगे, ठीक है कि नहीं, फिर अगर वापस जाने की दिल हो फिर आने की भी हमारी क्या कहेंगे वो वृत्ति रहेगी। तो ये खेल कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ये इटर्नल ड्रामा है। तो इस ड्रामा में प्रभु प्राप्ति के पश्चात क्या क्या करना है, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, फिर शुद्ध प्रवृत्ति के साथ इस मार्ग को तय करना है। कैसे, एक छोटी कहानी है इस पे। क्या कहानी है कि एक बार एक काफिला जा रहा था, रास्ते में एक अंधेरा टनल आया। सुना, काफिला जा रहा, बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे थे और रास्ते में क्या आया, टनल आया। टनल को क्या बोलते हैं, सुड़ंग आया, बहुत बड़ा एक काला अंधेरा सुड़ंग आया। उस सुड़ंग में जो लोग जा रहे थे, उस टनल से जब वो काफिला जा रहा था, तो लोगों ने महसूस किया कि उनके पांव के नीचे पत्थर जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उसे हटा, पांव तो सेफ है, मैं ठीक से चल रहा हूँ, पत्थर हटा दिया, फिर दूसरा पांव रखा, फिर पत्थर हटाया और चल दिए। दूसरे कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये फिर मेरे कहीं ना कहीं पांव में अड़ेगा, चलो उसको थोड़ा दूर दूर फेंको, आने जाने में हमको ही यहां से ही जाना आना है, तो उसने थोड़ा दूर दूर फेंक दिया। टनल तो यही है, अंधेरा टनल है, ये पत्थर मेरे नहीं तो किसी और के पांव में लगने ही वाले हैं, तो क्या ना अच्छा हो कि हम के टनल से बाहर फेंकते, ताकि आने वाले समय में किसी भी यात्री को इस टनल से आते जाते कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी के पांव में पत्थर नहीं लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने सारे पत्थर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इकट्ठा कर लिया और टनल पार हो गया, अंधेरा खत्म, रोशनी आ गई। अब क्या देखा, क्या देखा? हां जी, वो जो पत्थर थे वो पत्थर नहीं, वो हीरे थे। सुना, क्या सुना? टनल पार करने के बाद क्या देखा कि वो पत्थर नहीं, वो क्या थे? हीरे थे। अब बताओ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? जिन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए पत्थरों को इधर उधर किया हुआ होगा उनको कैसा लग रहा होगा, और जिन लोगों ने उठा के फेंक दिया, चलो मेरे लिए रास्ता ठीक हो जाएगा, उनको कैसा लगा होगा, और जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उन पत्थरों को इकट्ठा किया होगा सबको सुख देने के लिए, बाहर फेंकने के लिए, उनको कैसा लगा होगा, कैसा लगा होगा? ये हमारा मार्ग है, हमें उन राहों पे चलना है जहां गिरना और संभलना है। डगमगाता ये डगर है जिसके हर स्टेप में, हर पगर में, इस डगर के हर पगर में हिलने के चांसेस हैं, लड़खड़ाने के चांसेस हैं, लेकिन इस राह में मैं किस प्रकार से चल रहा हूं, मेरी वृत्ति क्या है, मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, वृत्ति प्रवृत्ति, किस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति लेकर के मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। लक्ष्य तो ये है मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, सत्व प्रधान बनना है, देवी देवता बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, ठीक है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरी वृत्ति क्या है। जब इस वृत्ति को, इस प्रवृत्ति को हम समझ जाएंगे तो देखना लक्ष्य भी बड़ा आसान होगा, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हाँ, जो भाई बहनों ने कंप्यूटर में गेम्स खेले होंगे या खेलते हुए देखा होगा, एक पहले शुरू में एक गेम आया था नीड टू स्पीड, उसमें आप कार ड्राइविंग सीख लेते हैं, कंप्यूटर में पूरी गाड़ी चलाते हैं, और उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं जितनी स्पीड से आप आगे जा सकते हैं, कितनी जल्दी जाके आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उस गेम की ब्यूटी ये थी कि आप जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो लिटरली जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं रास्ते में रोड पे, उसी प्रकार से यहाँ रोड पे आप चल रहे होते हैं। रास्ते में कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन चूंकि आप बहुत स्पीड में होंगे तो क्या होगा, आपका कंट्रोल कम होगा, कहीं ना कहीं किसी से टकराएंगे, कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे, लेकिन आपको जिद होती है कि मैं जाके अपने मंजिल पे जल्दी जल्दी पहुंचूं तो मेरे मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? आप चले जाते हैं, लेकिन गेम बड़ा इंटेलिजेंट होता है। आप पहुंचने के बाद खेल खत्म नहीं होता है, खेल खत्म होता है जब आप फिर ओरिजिन पे पहुंचते हैं, जहां से शुरू हुए थे वहां आपको फिर से आना है। और आएंगे कहां से, कहां से आएंगे? जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से आप वापस आएंगे, लेकिन वापसी के रास्ते में क्या होगा, जिस डस्टबिन को आपने धक्का लगाया होगा वो बिखेर तिखेर के यहां वहां पड़ा होगा। जब तक आप डस्टबिन को उठा के ठीक नहीं कर लेते आपको आगे जाने को रास्ता नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोल को हिट किया है वो नीचे गिरा हुआ है, जब तक आप उसको सीधा नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपने ये जो बहुत जल्दी में स्पीड में जितने जितने एक्सीडेंट किए थे, जो जो चीजें रास्ते में तोड़ फोड़ दिया था, वापसी आने में उन सबको रिपेयर करने के बाद ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो जीवन के इस यात्रा में ऐसा ही है, कई बार हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ने के लिए किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी से कैसा रिश्ता, किसी से कैसा रिश्ता, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, होती ना छोटी छोटी भूलें होती जा रही हैं। इवन ब्राह्मणों में भी, सभी आत्माओं में, पुरुषार्थी, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी आत्माओं में भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी कुछ बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर उन बातों को हम वहां ठीक ठाक नहीं करेंगे, वापसी रास्ते में क्या होगा? हाँ, वो गेम बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब आप कार में बैठे हैं, डस्टबिन आपको सीधा करना है, तो क्या वहां कार में बैठे बैठे कहेंगे डस्टबिन सीधा हो जा? क्या होगा? डोर खोलेंगे, कार को न्यूट्रल करेंगे, रखेंगे, ब्रेक देंगे और उसके बाद जो भी है बाहर निकलेंगे, फिर डब्बा ठीक करेंगे, वापस कार में जाएंगे, डोर बंद करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर आप पिकअप लेंगे, तो क्या होगा? टाइम सारा इसमें जाएगा। फिर आगे देखा तो फिर आगे और कुछ, फिर वो सारा रवैया चल रहा है। जीवन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर हम स्पीड में जाते हुए किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं जो होने योग्य नहीं है, हमारे फिर वापसी रास्ते में और आगे जाने में कहीं ना कहीं ये चीजें फिर से आने वाली हैं। और जब तक हम उन चीजों को रिपेयर नहीं कर लेंगे तो हम अपने ऊंचे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? दे दें किसी को तकलीफ और जाएं आगे बढ़ें, वो तो उसकी मर्जी है, तकलीफ ले रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो अपने स्पीड में जा रहा हूं। ठीक है कि नहीं? तो मेरी स्पीड में जो रास्ते में आएगा, जो हमसे टकराएगा, क्या होगा? वो चूर चूर हो जाएगा, वो इधर उधर गिरेगा, उसमें मेरा क्या दोष? लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस ऊंच प्रवृत्ति में, ऊंचे लक्ष्य को लेकर के, जीवन मुक्त अवस्था को पाने का अगर लक्ष्य रखते हैं, तो ये सब हम नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों का भी जीवन में ध्यान देना है कि कहाँ भूलें हो रही है, कहाँ कोई चीज की तकलीफ हो रही है, किसी को दुख दे रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उन सब चीजों को हमें रिपेयर करना होगा। तो जाके बड़ी सहजता से हंसते हंसते खेलते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। देखो किसने ठीक कहा है, डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए स्पीड सब कुछ नहीं है, स्पीड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पीड कभी कभी क्या कर सकता है, हमें अपने डेस्टिनेशन से दूर ले जा सकता है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है डायरेक्शन, दिशा। मुझे समझो, माउंट आबू जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाने के लिए मैं शांतिवन के 2 नंबर गेट से निकल करके या 6 नंबर गेट से निकल के राइट टर्न ले लूं और उसके बाद खूब स्पीड से गाड़ी चलाऊं, तो क्या होगा? मधुबन पहुंच जाऊंगा, पहुंचूंगा मधुबन। हर स्पीड के साथ मैं अपने डेस्टिनेशन से दूर हो जाऊंगा। महत्वपूर्ण जो है वो स्पीड नहीं, महत्वपूर्ण क्या था? डायरेक्शन। अगर मैंने लेफ्ट ले लिया होता था, भले मैं स्लो चल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके पहुंचूंगा, अपने डेस्टिनेशन के नजदीक ही जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। स्पीड ज्यादा है या कम है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन डायरेक्शन राइट हो। ठीक उसी प्रकार जीवन में अगर हम अपने लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं, श्रीमत का हाथ ही हमारे साथ हो, वही राइट डायरेक्शन है। एक्चुअली बहुत बार हम अपनी बुद्धि भी चलाते हैं, है कि नहीं, कि जीवन में अगर ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। मेरा अनुभव ये कहता है, मैं जानता हूं ना दुनिया में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, लेकिन हमारे अनुभव बहुत लिमिटेड हैं। हमारे अनुभव हमें अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा पाएंगे। किसका हाथ है हमारे साथ? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का हाथ है, जो लेके हमें ठीक से डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या चेक करना है, क्या मैंने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, राइट डायरेक्शन पे हूं, मेरी जीवन की गाड़ी ठीक चल रही है, हमारा मार्ग शुद्ध प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, मेरी वृत्ति ऊंची है, अच्छी है, तो मेरी प्राप्ति अच्छी होगी। एक्चुअली इस संसार में जब आप कुछ भी प्राप्त करने की सोच लेते हैं तो लोगों का कहना है कि सोल ऑफ द यूनिवर्स, इस सारी कायनात की जो आत्मा है वो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मददगार बन जाती है। हाँ, देखो लोगों के ये शब्द हैं, जिसको सोचो तो बड़ा आनंद आता है कि कायनात की क्या आत्मा होती होगी। माना सारी सृष्टि के जो वृत्ति है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमें वहां तक पहुंचाने के लिए काम करने लग जाते हैं। एक ये अलग साइंस है, एक अलग मैकेनिज्म है। बाबा जिसको कहते हैं, आपके वृत्ति से एक वायुमंडल बनना शुरू हो जाता है, जो वायुमंडल आपको वहां पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब हम ऊंची सोच रखते हैं, ऊंचा ख्याल रखते हैं और उस अनुसार हमारी वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, और उस वृत्ति प्रवृत्ति में हमें संपूर्ण निश्चय होता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? निश्चय बुद्धि विजयति, तो हमें विजय प्राप्त होगा। कैसे? आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, वो कहानी आप सबने सुनी होगी, लेकिन फिर दोबारा याद दिलाने के लिए वो कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? ये कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की। किसकी कहानी है? छोटी सी चिड़िया की कहानी। जंगल में आग लग गई और बहुत बड़े बड़े जानवर जंगल में थे, लेकिन कोई तो आग से बचने के लिए भाग रहा है अपनी फैमिली लेकर के, कोई कुछ कर रहा है, कोई खड़े खड़े गॉसिप कर रहे हैं एक्सेट्रा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है इत्यादि। लेकिन उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी, ठीक है? उस चिड़िया ने क्या किया, जैसे ही देखा जंगल में आग है, वो फुर्र करके ऊपर की ओर उड़ी। क्या करने के लिए उड़ी होगी? पानी ढूंढने के लिए। क्यों? पानी को क्या करना था? जंगल की आग बुझानी थी, ठीक है? अब देखो, जंगल की आग बुझाने के लिए इतने पानी से तो काम नहीं चलेगा। तो चिड़िया ने एक बड़ा सरोवर ढूंढ निकाला, ठीक, और वहां गई पानी लाने के लिए। कितने बाल्टी लेके गई होगी चिड़िया? कैसे गई होगी? कैसे पानी लेके आएगी चिड़िया? चोंच में, उसके चोंच में कितना पानी आएगा? सोचो, एक दो बूंदी पानी लेके आएगी। लेकिन वो चिड़िया पानी लेके आई, उसने पानी डाला कहाँ? जंगल की आग में। क्या हुआ होगा? पानी डलते ही आग बुझ गया होगा। चोंच भर पानी डलेगा जंगल के आग में तो क्या होगा, वो और ही थोड़ा सा जलने में मदद ही करेगा। लेकिन चिड़िया हारी नहीं, उसको संपूर्ण निश्चय था, विश्वास था कि मेरे पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी, जो भी सोचा होगा उसने, और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही। फिर क्या हुआ होगा, जब वो चिड़िया पानी डाल रही थी, फुर्र करके उड़ रही थी, जा रही थी, आ रही थी अपने दृढ़ संकल्प से, तो उस समय हाथियों का एक झुंड वहां पे आके पहुंचा, ठीक है? और हाथियों में से एक छोटा बेबी एलिफेंट था वहां पे, छोटा हाथी, बच्चा हाथी। तो उसने देखा, बेबी एलिफेंट ने देखा, ये चिड़िया दीदी क्या कर रही है, जाती है फुर करके फिर आती है, भाग रही है इतने जोर से। तो उसने पूछा, चिड़िया दीदी आप क्या कर रहे हो? तो चिड़िया दीदी तो बिजी थी, किसमें? पानी ले जाने में। बोल पड़ेगी तो क्या होगा, पानी वहीं गिर जाएगा। तो गई पानी डाल के वापस आई। उसने कहा, हाथी भैया तुम्हें पता है जंगल में आग लगी है और उसे बुझाने के लिए मैं पानी लेके जा रही हूँ। फिर उसने चोंच भरा और उसको चोंच भरते देखा तो बेबी एलिफेंट को जोर से हंसी आ गई, हाथी को जोर से हंसी आई। अब देखो ये चिड़िया दीदी अपने आप को समझती क्या है। तो उसने जोर से बोला, चिड़िया दीदी तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे चोंच भर पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया दीदी बिजी थी, फिर कुछ नहीं बोली, ठीक है, पानी डाल के वापस आई। फिर उसने जवाब दिया, क्या बोला होगा? कहा, हाथी भैया मुझे ये नहीं पता कि मेरे पानी डालने से आग बुझेगी या नहीं, लेकिन मुझे एक बात का इम्तिनान है, वो क्या है कि जब कभी जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम ना आग लगाने वालों में आएगा, ना आग को देख के गॉसिप करने वालों में आएगा, ना आग को देख के जंगल से पलायन करने वालों में आएगा, मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में आएगा। ठीक है, फिर बिजी हो गई चिड़िया किस काम में, चोंच भरा और पानी लेके गई। जब इतनी छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा लेक्चर दे रही थी तो बेबी एलिफेंट के साथ साथ हाथियों का सरदार भी सुन रहा था। सुना, जब हाथियों के सरदार ने इस बात को सुना कि एक इतनी सी चिड़िया में इतना बड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम हाथी होके किस काम के हैं, तो उसने सब हाथी भाइयों को आह्वान किया, चलो हाथी भाइयों जंगल की आग बुझाते हैं। तो सब लोग मार्केट में गए होंगे बाल्टी खरीदने के लिए, नहीं तो क्या किया होगा सबने, सूंड में पानी भरा और जाकर के पानी डाल के आए। दो बार, तीसरे बार में जंगल की आग बुझ गई। अब आप बताइए जंगल की आग किसने बुझाई? चिड़िया ने। और एक चोंच में उसके डेढ़ ड्रॉप पानी लेके वो जा सकने वाली चिड़िया जंगल की आग कैसे बुझाएगी? हाँ, कहानी जितनी सहज सरल और जितना मनोरम है, बच्चों जैसा है, लेकिन उसकी सबक, उस कहानी का मॉरल जो है वो उतना गहरा है, वो हम बच्चों से बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, चिड़िया ने ही जंगल की आग बुझाई। कैसे? अब बताओ, जब चिड़िया पानी लेने गई तो वो तो किसी खूंचे में से इतना सा पानी ले सकती थी, किसी पत्ते में भी उसको डेढ़ ड्रॉप पानी मिल सकता था जो लेके तोड़ने जाती, लेकिन चिड़िया ने ऐसा नहीं किया। जंगल की आग बुझाना है तो कहाँ गई? सरोवर में गई। और उसका जो पुरुषार्थ था, उसका जो मनोबल था, उसकी जो दृढ़ संकल्प था, उस दृढ़ संकल्प ने क्या किया? एक वातावरण बनाया, एक वाइब्रेशन बनाया। और वो वाइब्रेशन कहाँ जाके पहुंचा? कायनात की आत्मा ने काम करना शुरू किया, माना वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। वो वाइब्रेशन कहाँ पहुंचा? दूर जा रहे हाथियों के झुंड के पास पहुंचा। अनायास ही वो हाथी नहाने पानी पीने कहाँ आ गए? उसी सरोवर में जहां से चिड़िया पानी ले रही थी। ये अनायास नहीं था एक्चुअली, ये उसके सोच, उसके दृढ़ संकल्प का रिजल्ट था कि वो हाथी वहां ड्रॉ होके आए। उसमें भी एक छोटा हाथी क्यों होगा? सब हाथी तो ना रहे थे, किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन नोटिस किसने किया? छोटा हाथी ने, बेबी एलिफेंट ने उसको नोटिस किया, उसने प्रश्नोत्तर किया और राइट टाइम पे चिड़िया ने राइट आंसर दिया, जो किसने सुना? लीडर ने सुन लिया। ठीक है, बोलो इन सबको किसने टेलीफोन करके लीडर को बोला, भाई तुम ही सुनो, और लोगों के सुनने काम नहीं चलेगा। सोचो किस प्रकार से वो कार्य हुआ कि फाइनली जंगल की आग बुझ गई। ठीक है, तो जीवन में हमेशा ऐसा ही है, जब हमने लक्ष्य ऊंचा बनाया है तो हमें देखने की जरूरत है कि लक्ष्य के प्रति हमारा डेडिकेशन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पत्थरों को हटा रहे हैं कि इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम अपनी सोच में, अपने कॉन्सेप्ट में जितने क्लियर होंगे, जितने अच्छी तरह से लगेंगे अपने मार्ग, हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, उतनी शुद्धता के साथ इस प्रवृत्ति में आगे बढ़ेंगे, हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से, बहुत सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, समय हो गया है, आप सभी भाई बहनों ने बहुत धीरज के साथ सुना, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। बैठते हैं बाबा की याद में।